नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ड्रूंगाई लाइफ इन फर्स्ट पर्सन विख्यात गेम डिजाइनर जॉन रोमेरो का आत्मकथात्मक संस्मरण है। यह पुस्तक उनके निजी जीवन, शुरुआती प्रोग्रामिंग कार्य और वीडियो गेम उद्योग के निर्णायक दौर को एक साथ रखती है। रोमेरो डूम, वोल्फेंस्टाइन 3D और क्वेक जैसी प्रभावशाली गेमों के सहनिर्माता रहे हैं, इसलिए संस्मरण केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि 80 और 90 के दशक के पीसी गेम विकास का अंदरूनी दस्तावेज भी बन जाता है। पुस्तक का उद्देश्य रोमेरो की सार्वजनिक छवि के पीछे मौजूद जटिल व्यक्ति को सामने लाना है। इसमें हिंसा और अस्थिरता से भरे बचपन, मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कोड लिखने के प्रति उनके शुरुआती आकर्षण, आईडी सॉफ्टवेयर की रचनात्मक ऊर्जा और व्यावसायिक तनावों पर खुलकर चर्चा होती है। रोमेरो की हाइपरथाइमेशिया अर्थात असाधारण आत्मकथात्मक स्मृति विवरणों को विशेष गहराई देती है। फिर भी पुस्तक तकनीकी इतिहास को केवल उपलब्धियों की सूची नहीं बनाती, यह दिखाती है कि डिजाइन, प्रौद्योगिकी, सहयोग और व्यक्तिगत संघर्ष मिलकर किस तरह एक नई मनोरंजन विधा को आकार देते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कठिन बचपन और गेम निर्माण को सुरक्षित रचनात्मक जगह बनाना। पुस्तक का एक केंद्रीय आधार रोमेरो का बचपन है, जिसमें पारिवारिक अस्थिरता, भावनात्मक चोट और हिंसा के अनुभव शामिल रहे। वे इन प्रसंगों को अपनी बाद की उपलब्धियों के लिए सुविधाजनक प्रेरक कथा की तरह प्रस्तुत नहीं करते। इसके बजाय संस्मरण यह संबंध स्पष्ट करता है कि जब घर की दुनिया असुरक्षित हो, तब कंप्यूटर और गेम डिजाइन नियंत्रण एकाग्रता और कल्पना के लिए अलग स्थान दे सकते हैं। रोमेरो के लिए गेम केवल समय बिताने का साधन नहीं थे, वे ऐसी प्रणालियां थीं जिन्हें समझा, बदला और बनाया जा सकता था। यह अनुभव उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था जिसकी निजी परिस्थितियां अक्सर उसके नियंत्रण से बाहर थीं। पुस्तक उनकी मैक्सिकन अमेरिकी और पास्कुआ याकी पहचान तथा परिवार के भीतर नस्लीय पूर्वाग्रह के प्रभावों को भी छूती है। इससे उनका आत्मचित्र अधिक व्यापक बनता है, क्योंकि तकनीकी प्रतिभा को सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ से अलग नहीं किया गया है। इस हिस्से का महत्व यह है कि यह रचनात्मकता को केवल प्रतिभा या महत्वाकांक्षा का परिणाम मानने से रोकता है। रोमेरो के मामले में कोडिंग और डिजाइन एक व्यावहारिक कौशल होने के साथ कठिन अनुभवों को दिशा देने का माध्यम भी बने। पाठक समझता है कि उनकी निर्भीक डिजाइन शैली के पीछे जोखिम लेने की आदत, आत्मनिर्भरता और नई दुनिया बनाने की गहरी आवश्यकता थी। दूसरा, एप्पल टू से पेशेवर कोडिंग तक स्वयं सीखी तकनीकी अनुशासन की कहानी। रोमेरो की पेशेवर यात्रा उस दौर का उदाहरण है जब व्यक्तिगत कंप्यूटरों ने उत्साही किशोरों और युवा प्रोग्रामरों को उद्योग में प्रवेश का असाधारण अवसर दिया। पुस्तक में वे एप्पल टू के लिए गेम कोड बनाकर कंप्यूटर पत्रिकाओं को भेजने के शुरुआती अनुभवों का वर्णन करते हैं। यह रास्ता आज के औपचारिक तकनीकी करियर मार्गों से अलग था, क्योंकि प्रकाशित कोड, प्रयोग और काम करने योग्य उत्पाद ही क्षमता के सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। रोमेरो का अनुभव बताता है कि सीखना केवल सिद्धांत पढ़ने से नहीं बल्कि सीमित उपकरणों में बार बार कुछ बनाकर, जांच कर और सुधार कर होता है। वे नौकरी के साथ रात में गैराज में प्रोग्रामिंग परियोजनाएं करने जैसी घटनाओं के माध्यम से अपनी कार्य निष्ठा दिखाते हैं। यहाँ मुख्य सबक लगातार अत्यधिक काम करना नहीं बल्कि कौशल को सार्वजनिक और उपयोगी परिणाम में बदलना है। पत्रिका के लिए भेजा गया कोड पाठक तक पहुंचता था, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता था और अगला अवसर खोलता था। संस्मरण यह भी रेखांकित करता है कि शुरुआती गेम उद्योग में डिजाइनर को अक्सर कलाकार, प्रोग्रामर, परीक्षक और उद्यमी की सीमाओं के बीच काम करना पड़ता था। इसलिए रोमेरो की कहानी तकनीकी दक्षता के साथ वितरण, समय सीमा और दर्शक की समझ को भी जरूरी बताती है। आकांक्षी डेवलपरों के लिए यह हिस्सा याद दिलाता है कि स्वतंत्र प्रयोग तभी प्रभावी बनता है जब उसे पूरा करने और दूसरों तक पहुंचाने का अनुशासन मौजूद हो। तीसरा, आईडी सॉफ्टवेयर में डिजाइन और इंजन तकनीक की पूरक साझेदारी। ड्रूंगाई का सबसे उपयोगी ऐतिहासिक पक्ष आईडी सॉफ्टवेयर के भीतर रचनात्मक सहयोग का चित्र है। रोमेरो और जॉन कार्मैक की साझेदारी को अक्सर केवल नाटकीय मतभेदों के चश्मे से देखा गया है। पुस्तक इस सरलीकरण को चुनौती देती है। रोमेरो बताते हैं कि कार्मैक की इंजन और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता तथा उनकी अपनी डिजाइन दृष्टि ने मिलकर ऐसे गेम बनाए जिनका प्रभाव बहुत दूर तक गया। इस विभाजन को कठोर पदों की सूची मानना गलत होगा, लेकिन संस्मरण से यह स्पष्ट होता है कि नई तकनीक अपने आप यादगार गेम नहीं बनाती। खिलाड़ी की गति, स्तरों की संरचना, मुकाबले की लय और दुनिया का वातावरण तकनीकी उपलब्धि को अनुभव में बदलते हैं। वोल्फेंस्टाइन 3D, डूम और क्वेक के विकास में यही परस्पर निर्भरता महत्वपूर्ण थी। पुस्तक उस तीव्र वातावरण को भी दर्ज करती है जिसमें छोटी टीमों ने तेजी से प्रयोग किए और सीमित समय में उत्पाद जारी किए। इससे गेम विकास की एक व्यावहारिक सच्चाई सामने आती है कि अग्रणी काम व्यक्तिगत प्रतिभा का नहीं बल्कि अलग क्षमताओं के सही संयोजन का परिणाम होता है। रोमेरो बाद में हुए अलगाव पर भी अधिक मानवीय दृष्टि रखते हैं और कटु शत्रुता की लोकप्रिय कथा को स्वीकार नहीं करते। यह संतुलन संस्मरण को उद्योग की गपशप से ऊपर उठाता है। पाठक सहयोग के लाभ, दबाव और सीमाएं तीनों को एक ही ढांचे में देख पाता है। चौथा, फर्स्ट पर्सन शूटर को डिजाइन, भाषा और सांस्कृतिक घटना में बदलना। यह संस्मरण डूम और संबंधित गेमों की सफलता को केवल बिक्री, विवाद या तकनीकी नवीनता से नहीं समझता। रोमेरो के अनुभव से स्पष्ट होता है कि फर्स्ट पर्सन शूटर की शक्ति खिलाड़ी को दुनिया के भीतर सीधे उपस्थित महसूस कराने में थी। गति, स्थान की बनावट, रहस्य, हथियारों का अनुभव और तत्काल प्रतिक्रिया, ये सभी तत्व मिलकर उस दृष्टिकोण को बनाते हैं जिसे बाद के अनेक गेमों ने अपनाया। रोमेरो का योगदान विशेष रूप से डिजाइन के स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे तकनीकी संभावना को खिलाड़ी की जिज्ञासा और क्रिया से जोड़ते हैं। इतर केवल रास्ते नहीं होते, उनमें दिशा भ्रम, खोज, तनाव और अप्रत्याशितता का संतुलन होना चाहिए। पुस्तक का ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि यह उस समय की विकास संस्कृति को निर्माता की नजर से दिखाती है जब पीसी गेम तेजी से एक सीमित शौक से व्यापक सांस्कृतिक माध्यम बन रहे थे। भारी संगीत से प्रभावित टीम संस्कृति और सीमाओं को तोड़ने की इच्छा ने इन गेमों की पहचान को मजबूत किया। फिर भी संस्मरण का उपयोगी संकेत यह है कि किसी विधा का निर्माण एक अकेले आविष्कार से नहीं होता। तकनीक, वितरण, टीम की गति और खिलाड़ी अनुभव सभी मिलकर नई डिजाइन भाषा स्थापित करते हैं। गेम इतिहास के पाठकों के लिए यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसिद्ध शीर्षकों को केवल पुरानी यादों की वस्तु नहीं बल्कि माध्यम के विकास में सक्रिय प्रयोगों के रूप में रखती है। अंत में आयोन स्टॉर्म, व्यावसायिक गलतियां और असफलता को पुनर्परिभाषित करने की दृष्टि, रोमेरो अपने करियर की ऊंचाइयों तक सीमित नहीं रहते। आयोन स्टॉर्म से जुड़ा दौर पुस्तक में एक जरूरी प्रतिवाद की तरह आता है क्योंकि सार्वजनिक छवि में इस स्टूडियो को अक्सर अत्यधिक प्रचार, महत्वाकांक्षा और विफलता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। संस्मरण इस इतिहास से बचता नहीं लेकिन उसे केवल व्यक्तिगत पराजय में भी नहीं बदलता। रोमेरो का दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि सफल रचनात्मक व्यक्ति जब उद्यमी, प्रबंधक और सार्वजनिक व्यक्तित्व की अतिरिक्त भूमिकाएं लेता है तब निर्णय अधिक जटिल हो जाते हैं। अच्छी डिजाइन क्षमता स्वतः संगठनात्मक अनुशासन, लागत नियंत्रण या स्थिर व्यावसायिक ढांचे की गारंटी नहीं देती। यही अंतर पुस्तक को गेम निर्माण की चमकदार सफलता कथाओं से अलग बनाता है। रोमेरो के लिए बाद के अनुभव सीखने और काम जारी रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वे अपने करियर को एक अंतिम जीत या अंतिम हार के बजाय निरंतर पुनर्निर्माण के रूप में देखते हैं। यह रुख उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो रचनात्मक उद्योगों में प्रतिष्ठा और जोखिम के संबंध को समझना चाहते हैं। संस्मरण यह नहीं कहता कि हर असफलता मूल्यवान होती है बल्कि यह दिखाता है कि गलतियों की ईमानदार समीक्षा, पेशेवर संबंधों के प्रति सम्मान और नए काम की ओर लौटने की क्षमता लंबे करियर के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। रोमेरो गेम उद्योग में सक्रिय बने रहे जो इस पुनर्परिभाषा को व्यावहारिक विश्वसनीयता देता है। निष्कर्ष में डूम गाई लाइफ इन फर्स्ट पर्सन उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो डूम, क्वेक और वुल्फेंस्टाइन 3D के इतिहास में रुचि रखते हैं। लेकिन इसका दायरा केवल प्रशंसक संस्मरण से कहीं बड़ा है। गेम डिजाइन सीखने वाले विद्यार्थी इसमें तकनीक और खिलाड़ी अनुभव के संबंध, छोटे दलों की कार्यशैली और रचनात्मक साझेदारी के महत्व पर उपयोगी दृष्टि पा सकते हैं। उद्यमिता तथा डिजिटल संस्कृति के पाठकों को यह समझने का अवसर मिलता है कि तेजी से बदलते उद्योग में प्रसिद्धि, जोखिम और प्रबंधन की चुनौतियां कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। गैर गेमर पाठकों के लिए भी पुस्तक सुलभ रहती है क्योंकि रोमेरो तकनीकी विषयों को व्यक्तिगत अनुभव और स्पष्ट भाषा के साथ रखते हैं। इस पुस्तक की सबसे अलग विशेषता इसका दोहरा स्वरूप है। एक ओर यह कंप्यूटिंग और वीडियो गेम इतिहास के निर्णायक वर्षों का प्रत्यक्ष विवरण है, दूसरी ओर यह बचपन के आघात, पहचान, संबंधों और पेशेवर गलतियों पर अपेक्षाकृत खुला आत्मवृत्तांत है। अनेक गेम इतिहास पुस्तकें बाहरी शोध, उद्योग विश्लेषण या प्रसिद्ध उत्पादों की सफलता पर केंद्रित रहती हैं। रोमेरो का संस्मरण निर्माता की स्मृति से डिजाइन निर्णयों और भावनात्मक परिस्थितियों को जोड़ता है। हाइपरथाइमेशिया से समर्थित उनकी असाधारण स्मरण क्षमता विवरण को समृद्ध करती है, जबकि जॉन कारमैक और आयोन स्टॉर्म जैसे विषयों पर उनका संतुलित स्वर पुस्तक को सनसनीखेज बनने से बचाता है। इसलिए यह केवल गेमों की उत्पत्ति नहीं बल्कि सृजनात्मक तकनीकी करियर की मानवीय कीमत और संभावनाओं को समझने वाली पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन रोमेरो आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।